Surgióme. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मॉरिशस के मजबूत रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत राजीव भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च से मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में हिस्सा ले रही है। प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के निमंत्रण पर द्वीपीय देश की यात्रा पर जा रहे हैं और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ भारत के बेहद घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध रहे हैं। विशेष संबंधों का एक प्रमुख कारण और तथ्य ये भी है कि मॉरिशस की लगभग 12 लाख की आबादी में 70% की जनता भारतीय मूल की है। भारत 2005 से ही मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और आज हमारी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर ही होगी, एक बेहद खास मेहमान के साथ। पूर्व राजनयिक हैं राजीव भाटिया साहब। भाटिया साहब, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बारीकी से आपने इन राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध का अध्ययन किया है, कई देशों में आप राजदूत रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा इस वक्त क्यों महत्वपूर्ण है और इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या आपको लगता है?
मैं ये कह सकता हूँ कि भारत और मॉरिशस के संबंध बड़े विशेष संबंध रहे हैं और उसके कुछ कारण तो आपने अपनी भूमिका में स्वयं बता दिए हैं, मगर विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि एक तरह से भौगोलिक रूप से अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। निसंदेह ये जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, साथ ही साथ ये एक हमारे पड़ोसी देश के रूप में ही देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके साथ शुरू से हमारे बहुत घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, तो हर स्तरों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जब भी इन दोनों देशों के सबसे बड़े नेतागण आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो कि दोनों देशों के संबंधों के अलावा सारे क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी उनको सोचा जाएगा, बात की जाएगी। जहां तक प्रश्न है जो आपने विशेष रूप से संदर्भ का उठाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई देश एक बाहर से अपने मित्र को अपने स्वतंत्रता के जो सबसे विशेष समारोह होने जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है, तो ये एक सबसे बड़ा सम्मान देने का यत्न होता है और ये भारत के लिए किया जा रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा है, तो ये एक सारे ही भारतीयों के लिए हर्ष का और गर्व का विषय है।
बिल्कुल। और मॉरिशस का जो ये राष्ट्रीय दिवस है यानी 12 मार्च जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। गांधी जी से कहते हैं कि ये मिलता है क्योंकि दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने इसी दिन शुरू की थी, इसको आप कैसे देखते हैं?
इसको मैं बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी इस देश से बहुत विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो हो सकता है कि कुछ लोग भारत में आज भूल गए हों, उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे वकील के रूप में, साथ ही साथ एक समाज सेवा के रूप में काम कर रहे थे। 1901 में वो भारत वापस आ रहे थे, जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो जहाज को मॉरिशस रुकना पड़ा, और जब उन्होंने वहां की कम्युनिटी का, भारतीयों का स्थिति देखी तो उनको कुछ उन्होंने सलाह दी, कुछ परामर्श दिया, और उस परामर्श को मानते हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाने का बहुत ही सफल प्रयत्न किया, तो इसलिए उनका नाम, उनके ध्येय, उनके लक्ष्य इस देश की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, और उसी चीज को फिर से याद करने के लिए, उसको मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो निस्संदेह मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग महात्मा गांधी के सराहनीय योगदान के बारे में चर्चा करेंगे।
इस यात्रा से प्रधानमंत्री जी की कौन से प्रमुख समझौते या नई साझेदारी होने की आप उम्मीद कर रहे हैं? आने वाले समय में भारत और मॉरिशस के संबंध और मजबूत कैसे होंगे?
तो इसमें दो बातें हम कह सकते हैं। एक तो ये कि चाहे हम कितने ही एक देश के करीब हों, मगर जरूरी है कि समय समय पर जो सबसे बड़े नेता हैं उनको आपस में बैठकर एक दूसरे के देशों में अपनी सारी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक बातों पर चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा और इससे दोनों देशों की जो पारस्परिक समझ है, पारस्परिक सहयोग है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कई समझौतों पर दस्तखत होने हैं और कई प्रोजेक्ट्स या तो नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा होगी या कुछ जो प्रोजेक्ट इस समय तैयार हो गए हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा और उनसे भी फिर ये जाहिर होगा, ये प्रदर्शित होगा कि दोनों देशों के संबंध बराबर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे न केवल आशा बल्कि पूरा विश्वास है कि इस दो दिन की यात्रा से एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ इंडियन नेवी का एक जहाज भी जा रहा है और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की टुकड़ियां भी जा रही हैं, उससे भारत की छवि और ज्यादा मजबूत होगी, बढ़ेगी।
और जब ये घोषणा कर रहे थे वहां के प्रधानमंत्री कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे, उन्हें आमंत्रण भेजा गया है, तो उस वक्त पूरा का पूरा जो वहां की संसद है वहां बड़े लोग प्रसन्न थे और खूब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया इस फैसले।
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो वीडियो क्लिप देखा था और मुझको ये लगा कि वहां पर हर क्षेत्र के हर विचारों के जो संसद सदस्य हैं वो सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे कि श्री मोदी की इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद, शेड्यूल के बावजूद, अभी अमेरिका गए थे, फ्रांस गए थे, प्रधानमंत्री श्री नवीन रामगुलाम ने स्वयं कहा कि इन सबके बावजूद जब हमने भारत को निमंत्रण भेजा तो तुरंत प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार किया, वो आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर इस बात को बहुत महत्व दिया जा रहा है।
बिल्कुल, भारत और मॉरिशस के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मॉरिशस को भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत की विदेश नीति और व्यापार जो रणनीति है वो कैसे आगे जाती हुई दिख रही है, मॉरिशस उसमें क्या और अहम भूमिका निभा सकता है?
एक तरफ सामरिक महत्व है और सुरक्षा की बातें होती हैं और दूसरी तरफ आर्थिक विकास की बात होती है। तो जो पहला क्षेत्र है, हम उसमें कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें जो हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि भारत उन देशों के साथ घनिष्ठ रूप से काम कर सके जो शांति के, सहयोग के, भाईचारे के समर्थक हैं। और इस बारे में भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं, उनके जो सहयोग हैं, वो पूरी तरह से एक बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में माना जाता है। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मॉरिशस अफ्रीका के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मॉरिशस के पास जो अफ्रीका के बारे में विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है, जो उनके विशेष वहां पर कॉन्टेक्ट हैं, उनका ठीक से प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं कि उससे भारत को, मॉरिशस को और अफ्रीका को, सभी को और ज्यादा लाभ पहुंच सके। तो इस बारे में निस्संदेह उच्च स्तर पर चर्चा होगी, ऐसी संभावना है।
हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जाना एक प्रमुख मुद्दा रहा है और भारत की ही पहल पर, जैसा कि हम सब जानते हैं, सागर जो योजना है ये शुरू की गई थी। अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है?
सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये एक विजन है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा मॉरिशस में ही की थी 2015 में, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, इसके बारे में चर्चा हुई थी और पिछले 10 सालों में ये काफी हद तक आगे बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, वो मजबूत होता चला गया है। अब उसके 23 सदस्य हैं, फ्रांस ने उसमें प्रवेश कर लिया है, भारत का उसमें विशेष रूप से हिस्सा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब करीबन 12 साल के बाद इस क्षेत्र की अध्यक्षता का सौभाग्य फिर से भारत को मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों देशों में इस बारे में जरूर चर्चा होगी कि किस तरह से हम IORA को और ज्यादा मजबूत कर सकें। दूसरी बात यह है कि 2015 के बाद से भारत ने और अन्य देशों ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को भी उसकी घोषणा करी, उसको बनाया और ये कहा गया कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर किसी हद तक दोनों एक दूसरे से उनकी समस्याएं, उनके प्रश्न, उनके सहयोग जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में काफी हद तक भारत की नीतियां और ज्यादा आगे उसका विकास हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस यात्रा के दौरान में हो सकता है कि सागर के विजन के बारे में कुछ और शायद महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हम लोग को सुनने को मिले।
और सागर परियोजना जो है, दरअसल हिंद महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियों का समाधान करने में बेहद सफल रही है और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले समय में और इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर लाभ मिलेगा।
निस्संदेह, और हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो यत्न है वो ये है कि एक तरफ सबसे ऊंचे लेवल पर, इंडो पैसिफिक लेवल पर सहयोग प्राप्त किया जाए, फिर उससे नीचे हटकर इंडियन ओशन के लेवल पर वो सहयोग प्राप्त किया जाए और उसके बाद और करीब आते हुए जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली संस्था होने वाली है, यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें भी ये सारे जो आपने प्रश्न उठाए हैं उनके बारे में वहाँ बराबर चर्चा हो रही है और मुख्य रूप से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो देश सदस्य हैं उनमें मॉरिशस और भारत दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्र पर, बीच के क्षेत्र पर और छोटे क्षेत्र पर हर तरह से भारत और मॉरिशस जो सुरक्षा की बात है और जो सहयोग की बात है उसमें हम दोनों एक ही पेज पर हैं, वो चीज सच साबित हो रही है।
आपने एक पुस्तक भी लिखी है और चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा है एक राजनयिक के तौर पर कई देशों का और खास करके अफ्रीका में, आपने भारत अफ्रीका संबंधों पर एक किताब लिखी और उसमें मॉरिशस का भी जिक्र हुआ है। और जिक्र आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि मॉरिशस आखिर प्रवेश द्वार है और अगर आप अफ्रीका में हैं और भारत से हैं तो मॉरिशस को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं आपकी किताब से ही दो लाइनें पढ़ता हूं अनुवाद करके कि इतिहास, जातीयता, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का एक विशेष मिश्रण भारत और मॉरिशस संबंधों को एक अनूठी बनावट और रंग प्रदान करता है। और फिर आपने डिटेल में उल्लेख किया है कि किस तरीके से 1834 में जब दास प्रथा का खात्मा हुआ, भारत से एक जहाज में लोग गए और वहां पर जाके काम किया, वहां उनकी दुर्दशा भी हुई और शायद यही वजह है कि वहां मॉरिशस की जो 12 लाख की आबादी है आज उसमें 70% भारतीय मूल के ही लोग हैं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने मेरी पुस्तक का उल्लेख किया है, मगर मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा कि भारत और मॉरिशस के संबंध मात्र सरकारों के संबंध नहीं है। इस समय जो स्टेज हमारे वार्तालाप में आ चुकी है जिसे हमें जरूरी है कहना कि दोनों देशों के जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत की संस्कृति, धर्म, भारत की भूमि, भारत की रीतियों से, रिवाजों से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो पूरी तरह से भारत की संस्कृति में आस्था रखते हैं। और ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब मैं स्वयं वहां गया था मॉरिशस में, तो मैंने देखा था कैसे वहां पर भारत की परंपराएं, भारत के पर्वों को माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि भारत की जो कूटनीतिक अप्रोच है उसको हम जो वहां की पूरी जनसंख्या के लोगों को समेट कर उनके साथ मिलकर चलते हैं। तो निस्संदेह मॉरिशस के साथ भारत के संबंध और ज्यादा गहरे होंगे, मॉरिशस का जो रोल है भारत की फॉरेन पॉलिसी में और ज्यादा बढ़ेगा और हमें कामना करनी चाहिए कि ये यात्रा इतनी सफल हो कि इससे जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी आधारशिला बनी हुई है दोनों देशों के लिए, वो और ज्यादा मजबूत हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 और 12 मार्च को होने वाली मॉरिशस यात्रा पर चर्चा करने के लिए पूर्व राजनयिक राजीव भाटिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत मॉरिशस के मजबूत रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत राजीव भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में